તારીખ 17/12/1994 શ્રી મદ્રાજચંદ્ર પત્રાંક 223 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 90 મૂળ કેસેટમાં અવાજ ધીમો છે.
मन जाता है किंतु मन कहीं लगता नहीं है. મહેસૂસ કરેગા પણ યા તો દુઃખી મહેસૂસ કરેગા કે ભલે નહીં લગતા ઉસકો સમાધિ સુખ હૈ ઉસકો કહીં દુઃખ હોતા નહીં હૈ ये सुभाष राय को लिखा हुआ पत्र है सब कहते हैं
आता है मन जाता है और लगता नहीं
जिसको ऐसा स्पष्ट वस्तु के स्वरूप का ज्ञान है कि मन वहां जाता है फिर भी वहां मेरा सुख नहीं है और बाहर में तो सुख भी नहीं है कहीं कोई पदार्थ में अपना सुख तो है नहीं तो वस्तु का स्वरूप ज्ञान किसको है मन जाएगा लेकिन सुख बुद्धि के कारण से नहीं जाएगा सुख बुद्धि के कारण से जो मन की दौड़ है उसमें आकुलता अवश्य है तो वह सुख नहीं है लेकिन सुख बुद्धि बिना भी पूर्व संस्कार के कारण से परिणाम विचलित होकर के ऊपर ऊपर से मन चला जाता है लगता नहीं है ज्ञानी को देहाभिमान किसका गला है जिसको आत्मज्ञान हुआ है मैं परमात्मा हूं ऐसा ज्ञान हुआ है ऐसा जाना है उसको मैं मनुष्य हूं ऐसा भाव नहीं रहता उसका देहाभिमान चला गया फिर भी मन कहीं जाता है तो इसके लिए मत कल्पना करो इसका मन क्यों जाता है जहां जहां इसका मन जाता है वहां वहां उसको तो समाधि ही है इसका मन कहीं लगेगा नहीं ये हालत हो जाती है आत्मा जो अनंत सुख धाम है सर्वोत्कृष्ट अनंत अनंत कितना सुख है अनंत अनंत किस प्रकार का अचिंत्य जिसका चिंतन नहीं कर सकते मन में और कैसा है कि अल्लाह कोई बाधा नहीं पहुंचा सके ऐसा जो सुख धाम आत्मा है ऐसा जिसको अनुभव है और अनुभव की परिणति भी अंदर में प्रवाहित है उसका मन सुख के कारण से और जगह नहीं जाता सुख के लिए नहीं जाता तो लगता नहीं है वहां मन छोड़ता नहीं है सत्य का नहीं
है जो दशा है मोक्ष दशा
अपने ही ज्ञान दशा ज्ञान ये मान ज्ञान दशा उत्तम मोक्ष होता है उनकी उदासीनता बढ़ती है उदासीनता का क्रम में आगे बढ़ा उनका मन भी नहीं जाएगा लेकिन उनको सुख की उत्पत्ति अभी नहीं हुई है उस सुख को प्राप्त करने के प्रयास में उतना लगा है कि कहीं भी अनुकूलता प्रतिकूलता जो भी उसको समझ में आती है उसको अनुकूलता प्रतिकूलता इष्ट अनिष्टपना मिटाने के प्रयास में लग गया है जो मिटा नहीं है पूरा बुरा ज्ञान दशा नहीं आए तो लेकिन मिटाने में के प्रयत्न में पूरा लग गया है तो उनका भी मन नहीं चाहतेगा तो उनको ज्ञान दशा आना स्वाभाविक है ऐसे मनुष्य को ज्ञान दशा होना स्वाभाविक है
हम लोगों के परिणति में तो नहीं आती है ये बात पर वचन में आ जाती है हमारे परिणति में ये बात नहीं आती है पर वचन में आ जाती है हमको किस प्रकार का नुकसान होता है
किस प्रकार का
नुकसान होता है
वचन में आती है ऐसी बात और परिणाम में परिणति में परिणत नहीं होती है तो किस प्रकार का नुकसान है ये प्रश्न तो वचन में आती है उस वक्त परिणति में लाने का प्रयास चलता है या नहीं चलता है ये हमारा प्रश्न है
दोनों बात रहते हैं जैसे प्रयास अगर नहीं चलता है तो क्या स्थिति होगी
अगर प्रयास बिना वो बात चलती है तो उसमें तो स्वच्छंद होने का ज्ञान की शुष्कता होने का पता लग जाएगा पर ये नुकसान है या हम मान लेंगे कि हमको भी ऐसा होता है कल्पना भी हो जाएगी तो उस कल्पना से वो अति परिणामी पड़ा जिसको कहता है परिणत नहीं हुआ है लेकिन मान लिया है
ऐसी दशा होती है। इसलिए 693 गोपालदेव ने यही प्रश्न का उत्तर दिया है कि ज्ञान मार्ग पूरा राज्य है। कैसा है ज्ञान मार्ग पूरा राज्य है? मेरे कठिन है बहुत, इतना आसान नहीं है। ज्ञान मार्ग से स्वरूप की प्राप्ति करना वो कोई आसान बात नहीं है। परम अवगाढ़ दशा हुए बिना परम अवगाढ़ दशा की प्राप्ति के पहले उस मार्ग से पढ़ने का गिरने का बहुत स्थान है। परम अवगाढ़ दशा माने क्या? स्वरूप प्राप्ति की अपूर्व भावना जो लक्ष्य पूर्वक होती है, ऐसी दशा हुए बिना ज्ञान मार्ग से कोई आगे बढ़ना चाहता है तो उनको गिरने का स्थान बहुत है। उसमें क्या होता है? संदेह होता है कई जगह पे, क्योंकि वस्तु का स्वरूप ज्ञान में आता नहीं तो संदेह होता है। विकल्प बढ़ता है, और पढ़ता है और शास्त्र का अभ्यास करता है, विकल्प बढ़ता है। स्वच्छंदता आती है और अति परिणामी बना। इस प्रकार के कारण से बार बार जीव को उस मार्ग से गिरने का हेतु होता है, ये लिखा है। तो ऐसी बातें वचन में आए उस वक्त अपना प्रयास करना चाहिए। जो बात हम करते हैं उसका अगर हमें परिणाम नहीं है फिर भी ये बात करने लायक है, इस बात का रस लेने लायक है, तो इस बात का रस के दौरान हमारा प्रयास करना चाहिए। अगर हमारा प्रयास नहीं चलता है और हम बातें ही करते रहते हैं तो शुष्कता आ जाएगी, स्वच्छता हो जाएगा, अति परिणामी पड़ा भी हो जाएगा। ये नुकसान है, ये बड़ा नुकसान है। वो जीव को गिरने का स्थान है, ऊपर जाने का स्थान नहीं है, नीचे जाने का स्थान।
ऐसे नुकसान से कैसे बचा जाए? ऐसे नुकसान से कैसे बचा जाए?
प्रयास करें। इसलिए जो दूसरा पहलू था कि ऐसे नुकसान से बचना हो तो उस वक्त उस प्रकार का हमारा प्रयास होना ही चाहिए। अगर प्रयास नहीं होता है तो नुकसान होगा। आपके पत्र बहुत बार विगत से मिलता है, विस्तार से लिखा हुआ पत्र बहुत बार मिलता है और ऐसे पत्र पढ़ करके प्रथम तो आपके समाज में ही रहने की इच्छा होती है। क्या लिखते हैं कृपाण देव के, तो क्या सुभाग भाई को क्या लिखते हैं? आपके पत्र तो बहुत अच्छे आते हैं, आपकी पात्रता उसमें दिखती है, आपकी योग्यता हमें बहुत दिखती है और हमको ऐसा रहता है कि दूरी क्यों, पत्र व्यवहार करना पड़े इतनी दूरी के, हम तो आपके समाज में हैं, वही हमको तो पसंद आता है। तो पत्र वाली बात उससे पसंद नहीं है, कितना आपस में प्रेम है। ज्ञानी होकर के मुमुक्षु के समाज में यदि इस प्रकार की अच्छी योग्यता होती है तो उनके समाज में रहने का भाव है। तथापि कुछ कारण से वहां कुछ शब्द नहीं लिखा है, वह खाली जगह रख दिया है संपादित करने वाले ने, कोई ऐसा कारण बताया जो समाज के बीच में, क्योंकि पत्र की नकल उसको तो करके दूसरे में पहुंचते, तो व्यक्तिगत बात किसी की होती है तो लिखना ठीक नहीं है। तथापि अमुक कारण से यह इच्छा था, चाहे
स्मरण करना पड़ता है। कुछ ऐसे भी कारण है कि हमारी ऐसी इच्छा को जैसे तैसे भी निस्मरण कर देनी पड़ती है। ये इच्छा हमारी सफल नहीं होती है, इच्छा को छोड़ना पड़ता है। क्या करें, इच्छा छूट जाती है, विस्मरण करना पड़ता है। ते इच्छा को गमे ते प्रकारे विस्मरण करना पड़े छे। विस्मरण हो सकता है, विस्मरण करना पड़ता है। और पत्र का सौगत उत्तर लिखने की इच्छा होती है, आपके पत्र का बराबर विस्तार से उत्तर देने की इच्छा होती है, तो यह इच्छा भी बहुत करके क्वचित ही पूरी होती है। वो इच्छा पत्र लिख नहीं सकते, लिखने को का इच्छा होता है, लेकिन लिखने का कार्य होवे वहां तक उपयोग टिकता नहीं, उपयोग चलता नहीं है, और कोई इच्छा लिखने की पूरी नहीं होती है।
जैसे यहाँ पे ये बात है, भावना भावना है, परिस्थिति परिस्थिति है। अगर ऐसा छल अगर मुमुक्षु पकड़ के बैठ जाए तो उसका प्रतिबंध दृढ़ होगा कि छूटेगा?
दृढ़ होगा। क्या मुमुक्षु को भी सत्समागम की भावना होती है, और परिस्थिति सत्समागम की नहीं रही, और कोई मुमुक्षु भावना को गौण करके, इसमें क्या होता है, भावना को गौण करके परिस्थिति को की प्रधानता दे करके सत्समागम नहीं करता है, तो उसको लाभ होता है कि नुकसान होता है? समझाने की जरूरत नहीं है कि उसको नुकसान अवश्य होता ही है। क्यों कि उसकी प्रधानता सत्समागम पर नहीं रही, उसकी प्रधानता जो रही तो परिस्थिति पर रही। परिस्थिति को महत्व दिया, परिस्थिति को महत्व देना और महत्व नहीं देकर के उस परिस्थिति में रहना पड़े, जो दो बात अलग अलग है, तो एक बात नहीं होती है। ऐसे में क्या बात है, परिस्थिति की प्रधानता आ जाए और सत्समागम को गौण करे वो तो नुकसान का कारण है, लेकिन परदृढ़ का करता आता वैसे तो कोई हो ही नहीं सकता। कुछ परिस्थिति ऐसी भी होती है कि हम नहीं चाहे तो भी परिस्थिति में परवश होना पड़ता है, परवश रहना पड़ता है, तो उसका अत्यंत अत्यंत दुख हो करके रहना पड़ता, लेकिन परिस्थिति को प्रधानता वहां दी गई नहीं, भाव में नहीं दी गई। हो गया वो अलग बात है, भाव में, भाव में नहीं दिया, भाव में तो उसका बहुत खेद चलेगा। दृढ़ प्रधानता का पत्र लिखते हैं तो ज्ञानी का सही रूप से अनुकरण करना एक बात है, और ज्ञानी का नकल करना वो दूसरी बात होती है। हमें नकल नहीं करनी चाहिए, मुमुक्षु को नकल करने की बात नहीं है। हाँ, असलियत है, ऐसी असलियत आनी चाहिए कि परिस्थिति बनेगी सो बनेगी, होगी सो होगी, लेकिन परिणाम में तो नहीं भी प्रधानता परिस्थिति की आए ऐसा तो बनना चाहिए नहीं।
वर्तमान में अगर गौण कर लें सत्समागम को, हम कौन करें कि फ्यूचर में हमको और अटेंड करना है, जैसे अभी जैसे सत्संग का अगर जो बैठा है तो हम उसको गौन कर देते हैं कि चलो कोई शिविर में हम बाद में और लाभ लेंगे, तो अभी जो काम शिविर को अटेंड करने में जाएगा तो उस काम का प्रेशर तो बढ़ेगा, तो वो काम को अभी सत्समागम को गौन करके कम्प्लीट कर लें ताकि पूरा लाभ ले सकेंगे निर्विकल्प से। इस प्रकार का भी छल ग्रहण करना चाहिए।
पहले तो समागम तो मौन करना ये बात ही अपने हित के विरुद्ध है। सत्समागम को मौन करके हम ऐसा करें ये बात ही अपने हित के विरुद्ध है। दूसरा कि कोई व्यापारी वर्तमान लाभ को छोड़ करके भविष्य में मुनाफा करेंगे ऐसा धंधा कोई व्यापारी करता नहीं। करता है कोई व्यापारी? आज मुनाफा होता है कि आज नहीं लेंगे भविष्य में वो मुनाफा कर लेंगे, आज कोई जरूरत नहीं मुनाफा। तो व्यापारी नहीं है वो मूर्ख है। आज का लाभ छोड़ करके कोई उधारी का धंधा करता है उनको सत्समागम की रुचि नहीं है। वो बात भी छल पकड़ने की है और कुछ नहीं है, तो छल पकड़ता है। बलदेव लिखते हैं कि आपके पत्र के उत्तर हम नहीं लिख सकते हैं, इनके दो कारण हैं। तो जो भी है अपने परिणाम को खुला बताते हैं। तो सौभाग भाई अपने परिणाम को खुला बताते थे और बलदेव अपने परिणाम को खुला बता देते थे। तो दो कारण है, आपका आपका समागम में रहने का भाव रहता है तो आपको पत्र का उत्तर नहीं दे वो कैसे बनेगा? इतना आपके प्रति हमारा स्नेह है कि आपके समागम में हमें रहना है तो उत्तर तो देना ही चाहिए। तो फिर उत्तर तो लिखना तो इच्छा होती है लेकिन वो इच्छा पूरी नहीं होती है। इसके भी दो कारण है। एक तो यह विषय में अधिक लिखने जैसे आपको जो आपका जो पत्र आता है उसमें जो विगत है उसमें जो विषय है उस विषय में हम ज्यादा लिख सके ऐसी हमारी दशा नहीं है। वो बात हो जो अपने वर्तमान परिस्थिति के विषय में जो परिवर्तन चलता था वो उनकी वर्तमान परिस्थिति बाहर में कमजोर थी, कभी उसके कभी के परिणाम के खिंचाव हो जाता था तो उनका वो लिखते थे। तो किस विषय में तो हम कुछ लिख सके ऐसी हमारी दशाई ऐसे विषय में हमारा उपयोग नहीं चलता। और दूसरा कारण ऐसा है कि व्यवसाय में हमारे काम के भीड़ उतनी है, काम की भीड़ उतनी है, काउंटर बिजनेस जिसको कहते हैं, एक काम कर पूरा करें इसके पहले दूसरे तीन चार काम की क्यू लग जाती है, इसके बाद वो इसके बाद वो इसको बाद वो उसको बाद तो समय नहीं बचता है। ये उपाधि योग है क्या? वो काम बहुत है तो अच्छी बात है, वो बात नहीं है। व्यापार का काम बढ़ गया तो अच्छा हुआ वो बात नहीं है। व्यापारी को तो वो होता है कि काम ज्यादा बढ़े तो उनको बहुत रस आता है, हमारा बिजनेस जमा जमता है, इतना काम रहता है लोगों को, उतना काम रहता है बढ़ने की फुर्सत नहीं है। कैसा बोलेगा? कहते हैं कि ये उपाधि योग है और इस उपाधि योग में वो अपने पुरुषार्थ को अधिक संभालते थे, उतने अधिक संभालते थे कि तीसरी प्रवृत्ति बीच में करने के करने का अवकाश नहीं रहता था, जगह ही नहीं रहती थी, उतने अपने पुरुषार्थ में लगे हुए थे। उपाधि योग का मतलब यह नहीं कि हम घुस जाते हैं उदय के कार्य में, उतने व्यस्त हो जाते हैं, उतने व्यस्त हो जाते हैं, वो बात नहीं है। उपाधि योग का मतलब हो गया शब्द तो है, दूसरा कारण उपाधि योग। तो जो संयोग है इसके प्रति के जो परिणाम चलते हैं वो उपाधि वाले हैं, हमारा ज्ञान में वो उपाधि रूप दिखते हैं और ज्ञान कोई दूसरा दूसरी ओर खींचाए खींचा हुआ रहता है। तो दोनों के बीच में जो है एक पुरुषार्थ का
तो बताओ अपने पास वो है दूसरे दूसरे को सराय संबंधी को बताने को जाएगा क्या? पूछेंगे तो भी नहीं बताएंगे कि आपके पास कितनी बुरी हो गई है, जितना है उतना है, जवाब नहीं देंगे। ऐसे ज्ञानी अपने भीतर की संपत्ति भी ऐसे बहुत अनन्य पात्र होते हैं, उनको बता रहे हैं हमारे परिणाम ऐसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं, सबको बताते हैं। वो तो स्वभाव भाग के कारण से वरुणदेव की अंतरंग दशा ये शब्द गोचर हुई, पत्र में आरूढ़ हुई, तो हम लोगों को समझ में आया कि वो कैसे थे भीतर में। वरना इसी बात की समझ में नहीं आती तो पहचान भी होने का कोई तरीका भी समझ में नहीं आता। पहचान होने के लिए तो प्रत्यक्ष चाहिए, लेकिन कहां से पहचान होती है ये भी समझ में नहीं आता। लिखने का भी लिखने में भी वैराग्य होता है, यही भी एक कारण है कि हम आपके पत्र का विगत से विस्तार से उत्तर नहीं दे पाते हैं। अब जो इस पत्र का मुख्य अंश है वो यहाँ से शुरू होता है। आपने एक बार भक्ति के संबंध में प्रश्न किया था कि मुमुक्षु को ज्ञानी के प्रति भक्ति कैसे होनी चाहिए, ऐसा प्रश्न किया था। उस संबंध में ज्यादा बात तो प्रत्यक्ष समागम में हो सकता है ऐसी है, ज्यादा बात तो प्रत्यक्ष समागम में कर सके वैसी ये फीलिंग की बात है। ये बात सिर्फ कहने की सुनाने की नहीं है, कुछ बताने की भी है। और बहुत करके सभी बातों के लिए हमको समागम ठीक लगता है, पत्र लिखना ठीक नहीं लगता है हमको, तो समागम ठीक लगता है। तो भी बहुत ही संक्षेप में उत्तर लिखता हूं, यहां पर फिर भी संक्षेप में एक उत्तर लिखता हूं। एक परिग्रह बहुत बढ़िया लिखा है, लिखते हैं कि परमात्मा और आत्मा का एक रूप हो जाना यह परामुक्ति की आखिरी हद है, अंतिम की छिल्ली हद वही है, छेवट। परमात्मा और आत्मा का एक रूप हो जाना, अपना परमात्मा पर अंतर्मुख हुआ ऐसा जो आत्मा है, आत्म परिणाम दो में दो बड़ा नहीं रहे में, उसको कहने के लिए पराभक्ति है। वो परमात्मा की पराभक्ति है, परम मैंने परम उत्कृष्ट, इसके आगे कुछ नहीं थे। आत्मा और परमात्मा में अंतर नहीं रहा, अन्य बच्चे लोग ऐसे मानते हैं, ये जो दूसरे दूसरे परमात्मा होते हैं उसमें हम उतना एकाग्रता उसके सामने बैठ करके उतना ध्यान लगावे हम और परमात्मा एक हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अपने भीतर में जो परम स्वरूप परमात्मा है, आत्मा का जो परम स्वरूप है वही परमात्मा है, उसमें हमारी आत्म परिणति तदरूप हो जाए। और परिणति और द्रव के बीच में द्रव पर्याय का भेद हुए वो अनुभव में नहीं रहे, एकाकार हो जाए, उसको परामुक्ति की आखिरी हद कहने में आता है। ये अपने भगवान के प्रति भक्ति है, स्वरूप भक्ति।
यहाँ आत्मा से क्या कहना चाहते हैं और परमात्मा किसको संबोधित करते हैं?
परमात्मा तो मूल स्वरूप है और आत्मा है वो तो आएंगे नीचे से बात जाएंगे तो अपने एक संबंध में आएगा, लेकिन वो तो समझते थे ना श्री कृष्ण थे और इनके जो गोपाल नाय इसकी जो भक्त थी, गोपाल नाय इसकी भक्त थी, तो उसमें एक भाव रहता था, वो बात को कहना चाहते हैं। तो यहाँ परिणति और परमात्मा, परिणति को आत्मा कहते हैं और परम स्वरूप को परमात्मा कहते हैं। पर ऐसा होने के लिए सत्पुरुष को परमात्मा कहेंगे और सत्पुरुष के प्रति कई के भाव को परिणति, ऐसे दो बात फिर आएंगे। मूल जो है वो स्थापित करते हैं, मूल बात को कहेंगे कि परमात्मा मैंने अपना परम स्वरूप और इसमें उसकी जो परिणति है वो एक रूप हो जाए, उसको परामुक्ति की अंतिम आखिरी हद कहते थे। यही परामुक्ति की जो चरम सीमा है, यही परामुक्ति की चरम सीमा है, हद मैंने सीमा है। एक ऐसी उसमें भी चुटकपना नहीं होना, वो लय चालू रहना, वो परिणति चालू रहना, लय से लगी रहे पीछे के पीछे, उसको प्राप्ति कहने में आता है। कभी हमको अच्छी भक्ति आती है फिर दर्शन हमारे बदल जाते हैं, ऐसे नहीं, उस लय में चलते हैं, उसी के लय में परमात्मा के पीछे ही प्रगति बढ़ती रहती है, और कहीं जगह जाने का फिर मन नहीं होता है, या और कहीं होने का शक्ति छूट जाती है, दिखने की शक्ति छूट जाती है, बोलने की शक्ति छूट जाती है। परम महात्मा गोपांगना अब दृष्टांत दे देने भगवान का भक्ति का दृष्टांत दिया है, क्योंकि वो प्रकार के साहित्य को वो पढ़ते थे सुनते थे, पर उनको विश्वास तो कुछ था कि मेरे को कैसे कैसे बात होगा। परम महात्मा गोपांगना महात्मा वासुदेव की भक्ति में इसी प्रकार से रहती थी। हम गोपांगनाएं जो है जो वो दूध दही मक्खन बेचती हैं, तो गोप मैंने ऐसे व्यवसाय करने वाले जो गोप कहते हैं अपने गुजराती में मरवाड़ कहते हैं, इनकी स्त्री आलो को पाना है, वो कैसी थी? परम महात्मा, क्या बोले ऐसे नाम, परमात्मा की भक्ति करने वाले महात्मा नहीं होते, परम महात्मा होते हैं। ठीक कर लिखने की शैली बहुत विचित्र है। गोपांगनाओं को ऐसी भक्ति रहती थी ऐसा नहीं बोले, नहीं था वो परम महात्मा थे, कितना बहुमान दिया उसको। अरे परमात्मा की भक्ति करने वाले और उस प्रकार से चरम सीमा से उसकी भक्ति थी जिसकी हद नहीं है, इसकी भक्ति थी ये परमात्मा। परम महात्मा गोपांगना महात्मा वासुदेव की भक्ति में, वासुदेव को तो महात्मा कहा, परम महात्मा नहीं कहा। देखो भगवान को डिग्रेड किया और भक्त को ऊपर का स्थान दे दिया, ऊपर उनका लिखने का मोटिव क्या है, इधर समझने की जो चीज है वो है, तो कहना क्या चाहते हैं, इरादा क्या रखते हैं, इरादा वो रखते हैं कि भक्ति क्या चीज है वो हम तुमको दिखाना चाहते हैं। तो हम भक्ति के प्रकरण में तो ऐसा कहेंगे कि जो परम भक्ति चरम सीमा की भक्ति करते हैं वो परम महात्मा है, और इसके आगे भगवान तो महात्मा हो सकते हैं, परम महात्मा नहीं हो सकते। ठीक, कितना प्राधान्य भक्तिमान के प्रति हमारा है, भक्ति का आग्रह करते हैं, तो जबरदस्त बात किया है। परम महात्मा गोपांगना महात्मा वासुदेव की भक्ति में यही प्रकार से रहती थी। परमात्मा ने निरंजन और निर्देव रूप से चिंतन करने में जीव को ऐसी लय आना निकट है। अब क्या है कि भीतर में जो परमात्मा होता है वो तो निरंजन निराकार है, देखना है निर्देह रूप है, उसमें राग भी नहीं है, रागकांक्ष भी नहीं है, ऐसा जो परमात्मा है उसका चिंतन करने में ऐसी लय आना निकट है। क्यों? तो परंपरा समझाना है, निरंजन मैंने कैसा, देव बिना का मैंने माने कैसा, जैसे सिद्ध परमात्मा है उदय बिना का है, राग बिना के है, पर हमारा परमात्मा अंदर में भी देव बिना का है राग बिना का है, तो इसका चिंतन कैसे करें? हमारे पास तो ऐसा ज्ञान नहीं है कि सीधा हमारा उपयोग में वो जैसा का वैसा आ जाए, ज्ञानी पास लेकिन मुमुक्ष को नहीं आ सकता। यानी तीर्थ यात्रा में जाते हैं, खास करके निर्वाण भूमि में सफेद शिखर आदि है, वहां उनको लगता है कि अनंत तीर्थंकर यहाँ से बिल्कुल उत्तर विराजमान है। तो पूरे जितने भी सिद्धालय में वो वहां से गए ना, उनको इधर ले आ गए खींच करके, सिद्धालय में से उनको इधर ले आते हैं। उनको चित्त का ज्ञान है, इसलिए या तो अपना उपयोग को सिद्धालय में ले जाते हैं, प्रत्यक्ष कर देते हैं, ऐसे अनंत से विराजमान है, इधर ही बराबर विराजमान है, उपयोग में जा चला जाता है। तो उनको तो क्या है, क्या स्वरूप है, उस स्वरूप का निरंजन निराकार निर्देश स्वरूप का ज्ञान है। तो मुख्य को तो इस प्रकार का ज्ञान होता नहीं, कभी दर्शन किया नहीं परमात्मा का। तो उनको इसका चिंतन होना बहुत विकट है, क्योंकि चिंतन में विकल्प में उसका समावेश हो ही नहीं सकता, वो चीज आ ही नहीं सकती उसमें, ऐसी वो चीज है जो विकल्प में आ सकती नहीं है। मनुष्य को तो उसका चिंतन करना बहुत विकट है। इसलिए जिसको परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है, ऐसा देहधारी परमात्मा सबको बात को अनुसंधान कर दिया, ऐसा परमात्मा परामुक्ति का परम कारण है। इसलिए मुमुक्षु को तो जिसको परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है, ऐसा देहधारी परमात्मा परामुक्ति का परम कारण है। तो कैसा विषय का अनुसंधान किया है, भागवत की बात को कहां से लेकर कहां ले गए वो। मुमुक्षु को तो सिद्ध पद नजर में आएगा नहीं, तो जिसको निज परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है, यानी जिसके परिणाम में ऐसा निरंजन परमात्मा प्रकट हुआ है, व्यक्त हुआ है, ऐसा कोई देहधारी उसको साक्षात्कार कहते हैं। प्रत्यक्ष होना, साक्षात्कार पक्ष में प्रत्यक्ष होना, सब पक्ष में प्रत्यक्ष, साक्षात और प्रत्यक्ष दोनों एक अर्थ है। पक्ष मूल मूल शब्द अक्ष है, स्वक्ष और प्रत्यक्ष, वो दोनों प्रत्यय लगे हैं, एक अर्थ है। तो जिसको साक्षात्कार हुआ है, ऐसा कोई देहधारी परमात्मा है, ज्ञानी पुरुष है, ये मनुष्य के लिए परामुक्ति का परम कारण है। उनको ये निमित्त मिल सकता है तो वो मिल सकता है, अगर वो ज्ञानी में परमात्मा का दर्शन कर सकता है तो, या ज्ञानी की पहचान कर सकता है तो उनके लिए परम कारण है, ऐसा बन सकता है।
यहाँ निज की आत्मा को परम कारण नहीं लिया,
देहधारी परमात्मा को किसी निश्चय आत्मा आएगा कहां से पकड़ में, उनके ज्ञान में आने की कोई गुंजाइश तो है, योग्यता तो है नहीं। जो अगर परमात्मा है उनको तो ज्ञान में ले सकता नहीं, वो तो अनजाना है, इस विषय में अंधेरे में खड़ा है। अब जिसको साक्षात्कार हुआ है उसमें क्या हुआ है, कि जो भीतर में परमात्मा है उस परमात्मा के प्रति इनके जो परिणाम है वो उस रूप हुए हैं। कैसे हुए हैं परिणाम, तदाकार हुए हैं, स्वरूपाकार हुए हैं, वो प्रकट है। पर उसका दर्शन होता है तो उसके माध्यम से परमात्मा का भी दर्शन हो जाता है। परिणाम का दर्शन होता है तो परिणाम के विषय का भी दर्शन होता है।
मूर्छ जीव जब अपने आत्मा को नहीं पहचान सकता, मूर्छ जब अपने आत्मा को पहचान नहीं सकता, तो दूसरे के आत्मा में ये गुण प्रकट हुआ ये कैसे पहचानेगा।
क्योंकि अपना आत्मा शक्ति रूप है और दूर प्रकट हुआ वो व्यक्ति रूप है, तो शक्ति को तो नहीं देख सके लेकिन व्यक्ति को तो देख सकते हैं।
मेरा विषय व्यक्ति व्यक्त बना जो है ये देखने का विषय रहा।
हाँ, शक्ति है वो सूक्ष्म है और व्यक्ति है वो स्थूल है। जैसे दीवासलय में अग्नि है तो जिसको दीवासलय को उसका ज्ञान है वही पता चलेगा, वो अग्नि दिखने में नहीं आती और किसते है और सलगती है तो उसका ज्ञान होता है कि देखो अग्नि कैसी होती है। तो ये स्थूल पर्याय है, अग्नि की जो प्रकट हुई वो पर्याय स्थूल है और शक्ति रूप जो अंदर पर्याय रहती है वो सूक्ष्म है। तो स्थूलता का ज्ञान पहले हो सकता है, स्थूलता का ज्ञान बाद में हो सकता है।
पहचान का यही सब्जेक्ट मैटर है,
पहचान के लिए वही एक आधार है, दूसरा कोई आधार नहीं है। क्यों? कि कोई बाह्य चिन्ह समय दृष्टि को समय दर्शन का नहीं होता है। लोग बाह्य चिन्ह से पहचानने का प्रयास करता है तो क्या देखेगा तो उसका ज्ञान कैसा है और त्याग कैसा है। श्रद्धा तो दिखेगी जी, श्रद्धा तो नाप में आती नहीं, वो तो बहुत सूक्ष्म है। तो एक त्याग के परिणाम दिखने का है कि तो मंत्र लगता है इतना त्याग किया तो ज्ञान हो सकता है और इतना ज्ञान है तो भी ज्ञान ज्ञानी हो सकते हैं। तो बाह्य ज्ञान और बाह्य त्याग की महिमा जिसको आती है तो अंतर ज्ञान को पहचान देंगे और उसके जो परिणाम है वो सफल नहीं होते, धोखा खा जाता है। बाह्य दृष्टि का जोर अंतर दृष्टि को उत्पन्न नहीं होने देता, इसलिए कहीं भी बाह्य त्याग और बाह्य ज्ञान में मोहित होना चाहिए नहीं, जहां वो नहीं होना चाहिए बाह्य ज्ञान का और बाह्य त्याग का, इसकी महिमा ही नहीं करनी चाहिए, महिमा होनी ही नहीं चाहिए। अंतर दृष्टि से उनकी अंतरंग पहचान होवे ऐसी योग्यता